भगवते वासुदेवाय भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 12। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज चित्रकेतु के पुत्र होते हैं। मैं बद जीव इस प्रकार बोलकर जब चला गया तो चित्रकेतु तथा मृत पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मृत हुए। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग कर दिया। श्लोक संख्या 13 का अनुवाद। मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद संबंधियों ने उसने को भी त्याग दिया, जिसके कारण मोह शोक भय तथा दुख की प्राप्ति होती है। निस्संदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से परित्याग किया। सत्र बाल हत्या हदा प्रवाह बालहत्या व्रतम चेरु ब्राह्मणे यन्निरूपितम् यमुनाया महाराज स्वरन्त्यो दिव्यभाषितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। रानी कृतद्युति की सौते जिन्होंने बालक को विष दिया था अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर शिविहीन हो गए। हे राजन, शोक करते हुए उन्हें ऋषि अंगिरा के उपदेश स्मरण हो गए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वे यमुना के तट पर गई, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। इस श्लोक में बाल हत्या हत प्रवाह पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घकाल से मानव समाज में चली आती रही, किंतु उस समय ये विरले ही की जाती थी, किंतु आजकल इस काल में गर्भपात भ्रूण हत्या सर्वसामान्य है। यहाँ तक कि जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती रहती है। बाल हत्या हत प्रभात यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि जिन स्त्रियों ने बच्चे की हत्या की थी अत्यधिक लज्जित थी और उन्हें ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यदि कोई स्त्री कभी ऐसा दुष्कृत्य करती थी तो उसे प्रायश्चित करना होता था, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या की अपराधिनी होती है उसे जीवन में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं को बाल हत्या से विरत होना चाहिए और अपने दुष्कर्मों के लिए गंभीरतापूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई निष्कपट भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो तुरंत ही उसके पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसे कर्म पुनः न करें, क्योंकि ये पाप है। यहाँ पर महाराज चित्रकेतु की कथा चल रही है, तो जानते ही हैं कि उनकी संतान जो हुई थी इसका नाम हर्ष शोक पड़ा था। वाकई में वो हर्ष शोक का कारण था और महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी और एक ही संतान हुई और बाकी अन्य जितनी रानियां थी वो बहुत द्वेष से भरी हुई थी। जब देखा कि महाराज चित्रकेतु का सभी समस्त ध्यान, उनका सारा ध्यान जो है वो क्या कृतद्युति के ऊपर जा रहा है सारा ध्यान, और अन्य पत्नियां जो हैं सोचने लगी, उन्होंने योजना बनाई कि इस बच्चे को हमें मार डालना चाहिए। बच्चे को जहर देकर मार दिया गया था और बाद में फिर हम जानते हैं किस तरह से नारद जी और अंगिरा की कृपा से, आशीर्वाद से हर्षशोक फिर से पुनः जागृत हुए थे, पुनः जीवित हुए थे और बाद में हर्षशोक से भी काफी उपदेश मिला है और अभी अंत्येष्टि हुई है। यहां पर हर्ष शोक की अंत्येष्टि हो गई, लेकिन बाल हत्या तो किया है उन्होंने और बाल हत्या का दंड भुगतना पड़ेगा। तो पाप कार्यों से बचने का सबसे उत्तम उपाय है कि हम भक्ति मार्ग को अपनाएं। जैसे यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आजकल कलयुग में बहुत देखा जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, गर्भपात किया जाता है, एबॉर्शन जिसको कहते हैं, और ये बड़ा ही भयानक, बहुत ही घृणित कार्य है, बड़ा भयंकर पाप है, और इसके लिए तो कई जन्मों तक जो है माता के घर में इसी तरह से मरना पड़ता है और सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है। बड़ा भयंकर पाप है ये, क्योंकि आजकल के वैज्ञानिकों का कहना है कि माता के घर में बच्चा जो है सातवें महीने तक जब ना पहुंचे तब तक उसमें चेतना नहीं है, वो मृतक ही है, तो उसमें कोई मारना कोई पाप नहीं है। बस इतना जरूर किया है हमारे सरकार ने कि हाँ ये देखकर कि अगर कन्या है उसका गर्भपात किया जाएगा तो इसको क्या बताया गया है, इलीगल बताया गया है। लेकिन एबॉर्शन अपने आप में जो है उसको बैन नहीं किया गया, इसे कई आज भी कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कई नर्सिंग होम हैं जहां पर इस प्रकार जो है गर्भपात किया जा रहा है। बड़ा भयंकर ऐसे ऐसे पाप किए जा रहे हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे कोरिया जैसे देश है, ताइवान है, ऐसे देशों में तो यहां तक कि फीटस जो है वो लोग खाते हैं। एक मूवी भी है जिसमें आप देख सकते हैं, कंस को भय था कि कोई भी संतान जो है वो उसके मरने का कारण बन सकती है। आवश्यक नहीं है कि आठवीं संतान ही हो, आठवीं संतान जो है वो पहली संतान भी हो सकती है। इसलिए कंस बड़ा भयभीत था और उसने आज्ञा दी थी कि जितने भी बच्चे हैं ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया है पिछले 10 दिन में उन सबको मार दिया जाए। तो पूतना भेजा गया था और पूतना ने अपना वेश बदला था अपने माया शक्ति से। पूतना ने बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया और साक्षात लक्ष्मी लग रही थी देखने में। ब्रजवासियों ने जब देखा तो उनको लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी जो है वो ब्रज में प्रवेश की है गोकुल में, हाथ में कमल का फूल भी है और बेधड़क होकर सीधा नंद महाराज के घर में चली गई और वहां जाकर उन्होंने पूतना ने क्या किया, कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय, केवल 6 दिन के थे, 6 दिन हुए थे कृष्ण को, केवल 6 दिन हुआ था इस धराधाम में प्रकट हुए। तो बोलते ना छठी का दूध क्या बोलते हैं, छठी का दूध याद दिलाएगा। तो एक छठी का दूध इसलिए है, छठ पूजा भी होती है इसलिए। तो पूतना वध के कारण, तो छठे दिन पूतना को मारा था और पूतना घर में गई, घर के भीतर गई और कृष्ण को उठाकर स्तनपान कराना चाह रहे थे। तो घर में किसी ने आपत्ति नहीं की, बहुत देखा कि बहुत ही सुंदर स्त्री है और
बड़े प्रेम पूर्वक जो है कृष्ण को उठा रही हैं, ना माता यशोदा ने आपत्ति की, ना रोहिणी ने, माता रोहिणी ने आपत्ति की, सब लोग देखते रह गए और जितने गोकुलवासी थे उनके सुंदरता को देखकर ही मोहित हो गए थे कि सब देखते ही रह गए, कुछ कह नहीं पा रहे थे। और पूतना लेकिन जब देखा उसने कृष्ण को तो उसको लगा कि ये तो भगवान है, समझ गई थी बोलना, ये परम भगवान है। और कृष्ण का ऐश्वर्य का प्रभाव पूतना के ऊपर पड़ रहा था और पूतना जो है सोच पड़ गई कि क्या करूं, क्योंकि पूतना जो है वो भयभीत हो गई थी देखकर कृष्ण को, वास्तव में कृष्ण को देख रही थी, तो उसको लगा कि मैं क्या करूं। ऐसा उसको अद्वितीय ज्ञान हुआ पूतना को कि लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है। और ये देखकर कृष्ण ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। और यहां पर आप देखते हैं श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में और कृष्णा बुक में भी बताया कि किस तरह से पूतना के आने पर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। और उसे कई कारण बताया हमारे आचार्यों ने टीकाओं में। तो यहां पर बता रहे हैं कि जैसे पहले आपने कारण बताया कि उनको यह अद्वितीय ज्ञान हुआ कि ये साधारण बालक नहीं है, और कृष्ण ही चाहते थे कि पूतना जो है भयभीत हो जाए। इस कारण से पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद आगे बता रहे हैं यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी योगे, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और यहां पर तो प्रथम जो असुर जिसको मारने वाले हैं वो तो स्त्री है, पुरुष नहीं है। और शास्त्रों में स्त्री को, बच्चे को और गाय को मारना वर्जित है। इस कारण से भी कृष्ण ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली। तो ये और कारण बताया, दूसरा कारण बताया है। और दूसरा तीसरा ये बताया यहां पर कि कृष्ण पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पूतना ने कई बच्चों का वध कर दिया, इस कारण से कृष्ण उनको देखना नहीं चाहते थे। इससे क्या पता चलता है कि भगवान बड़े क्रोधित होते हैं, भगवान जो है ये कतई पसंद नहीं करते हैं कि बच्चों को गर्भ में ही मारा जाए। तो ऐसे लोगों का भगवान जो है मुंह नहीं देखेंगे कभी। श्रीमद् भागवत में तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां बताई जा रही है कि किस तरह से भगवान जो है उनको हम इस प्रकार से भी अगर उनके पास जाते हैं उनका वध करने के लिए, यदि कृष्ण जो है उनको ऐसे अस्त्रों का उद्धार करते हैं और स्तनपान कराने के बाद कृष्ण पूतना को गोलोक वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में माता का स्थान दे दिया। लेकिन बड़े ही निर्लज लोग हैं इस संसार में, इस पृथ्वी में, जो बच्चों को जन्म ही नहीं लेने देते हैं और गर्भपात करते हैं। कुछ लोग तो बच्चे चाहते ही नहीं हैं। आजकल ऐसे कई परिवार हैं वो बच्चे ही नहीं चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे ना हो और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल क्या है, इंद्र तृप्ति करना है। संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए कृष्ण भावित बनाने के लिए, लेकिन संतान की उत्पत्ति वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि संतान की उत्पत्ति के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर बच्चा हो भी जाता है गलती से तो फिर बच्चे को हम क्या करते हैं, किसी आय को दे देते हैं या क्रश में भेज देते हैं और इस प्रकार से बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती। और बचपन से बच्चे को जो है मातृ प्रेम, जो माता का प्रेम है, वो बच्चों को नहीं मिल पाता। इस कारण से जो है बच्चे जो है युवावस्था में पहुंचने से पहले ही जो है बिगड़ जाते हैं। विदेशों में ये देखा जाता है, विदेशों में बचपन में ही जो है आप देखते हैं कि लोग जो है अवैध संबंध साबित कर रहे हैं, यानी कि स्कूल्स में भी, यहां तक कि दिल्ली तक में जो है ऐसे कई स्कूल्स हैं जहां पर स्कूल्स में भी एबॉर्शन के कई केसेस हो चुके हैं। ये तो बड़ा है, मतलब सुनकर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस देश में कैसे हो गया, और विदेशों में तो ये सामान्य बात है और वहां में कोई रोक टोक है नहीं।
سارے غیر قانونی کارے وہاں سے ہوتے ہیں، اویدھ کارے ہوتے ہیں، اور اس پرکار سے جب بچے اگر بڑھتے بھی ہیں، یوا اوستھا تک پہنچتے بھی ہیں، تو پورے سماج کے لیے وہ بہت بڑے ابھیشاپ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا پورا جیون جو ہے پشو کی طرح بیتتا ہے، کوئی سنسکار نہیں ہوتے ہیں۔ کئی طرح کے سنسکار ہیں، اس میں سے ایک سنسکار ہے گربھادان سنسکار۔ گربھادان سنسکار کا مطلب ہوتا ہے کہ جنم لینے سے پہلے ہی یہ جنتا کے سامنے، پبلک کے سامنے یا سب کے سامنے یہ گھوشت کر دیا جاتا ہے کہ سنتان کی اتپتی کرنے والے ہیں۔ تو ویدک سنسکرتی میں کوئی بات چھپی نہیں رہتی، لیکن آج کل تو فلسفی بدل گئی ہے، وواہ کی بھی آوشیکتا نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وواہ کی کیا آوشیکتا ہے، پہلے ہم ایک دوسرے کو آزما لیں گے ایک سال تک، جس طرح سے دیکشا لینے سے پہلے ایک سال بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکشا گرہن کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتائیں گے۔ اس طرح کا مطلب کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جسٹیفائی کریں گے اپنے ایکٹیویٹی کو کہ ہاں آپ بھی تو ایک سال رکتے ہیں گرو سے دیکشا لینے کے لیے، اس لیے ہم بھی ایک ساتھ رک رہے ہیں ایک سال کے لیے وواہ کرنے سے پہلے۔ کتنی اچھی بات، اس کو لیو ان فلسفی کہتے ہیں۔ تو ایک فلسفی یمراج جی کی بھی ہے، لیو ان ہیل۔ آپ لیو ان کی فلسفی کو اپناتے ہیں تو لیو ان ہیل کی بھی ایک فلسفی ہے جو یمراج جی کے دوارا ہمیں دی جاتی ہے شریر چھوڑنے پر۔ تو نرک جانے کے لیے یہ ساری یوجنائیں بنائی گئی ہیں، جتنے بھی اسکولز ہیں کالجز ہیں، اس کا ایک ہی ادیشیہ ہے کہ نرک کیسے بھیجا جائے۔ جو نرک نہیں بھی جانے والا ہے وہ ان اسکولز میں اور کالجز میں جا کے نرک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج کے یوا پیڑھی سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، ہم بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ہیں، ہم بڑے ماڈرن ہیں، ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم لائر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نے اتنے سارے پاپ کیے ہیں۔ تو اس پرکار جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں، جیون کے ادیش کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بچوں کو مارنا کتنا گھنونا کاریہ دیکھیں۔ تو اس لیے اس سمے تو کیول ایک ہی پوتنا تھی، ابھی تو کئی گھروں میں پوتنا ہے، پورا سنسار پوتناؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ہول سیل میں ملے گا آپ کو پوتنا، پوتنا مل جائیں گے، کھچڑی۔ بس یہ ہے کہ ہاں ماڈرن پوتنا بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ راکشسی تھی، وہ راکشسی تھی لیکن اس نے نیا سندر روپ دھارن کر کے وہ گوکل میں پرویش کیا اس نے۔ اسی طرح سے آج کی پوتنا بھی بہت سندر وستر پہنے، یا وستر ہی نہیں پہنے ہوئے، ارد وستر پہنے ہوئے گھر گھر میں جا رہی ہیں یا گھر گھر میں رہ رہی ہیں اور بچوں کا ود کر رہی ہیں، شنگار کر کے، سوسجت ہو کر، آدھنک وستر پہن کر، وسترہین ہو کر بچوں کا ود کیا جا رہا ہے۔ یہ گربھپات کرنے کا بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، اور ڈاکٹرز لوگ نے بھی جو ہے دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے، ہاسپٹلز، یہ جو میڈیکل لائن میں جو آج کل جو شکشائیں دی جا رہی ہیں وہ کیول دھن کمانے کے لیے ہے، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں کیول پیسہ کما رہے ہیں، علاج کرنا ان کا ادیش نہیں ہے۔ ان کا ادیش ہے کہ کیسے اس ویکتی کو اپنا مریض بنا کے رکھوں جیون بھر کے لیے، یہ میرے پاس آیا ہے، یہ میرے لیے لانگ لائف جو ہے کسٹمر ہے، بک ہو گیا، اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، دوائیاں دے دے کر ماروں گا میں اس کو۔ کتنے دکھی بات۔ اور اگر گربھپات نہیں بھی کرتے ہیں ماتائیں، تو ان ماتاؤں کے گھر میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس سمے ایسی ماتائیں سموکنگ بھی کر رہی ہیں، ڈرنک بھی کر رہے ہیں، اس کا کیا پربھاؤ پڑ رہا ہے بچے کے اندر؟ بچہ جنم لینے سے پہلے ہی شراب پی رہا ہے، بچہ جنم لینے سے پہلے ہی سموک کر رہا ہے، ماتا کے گھر میں اس کو سموکنگ اور ڈرنکنگ کا موقع ملا ہے۔ تو جنم لینے کے بعد کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ گیتا کا پاٹھ کرے گا، بھاگوت پڑھے گا، مندر آئے گا، तो ये हमारा समाज है, ये कलयुग है, कली का प्रभाव है। ये तो द्वापर युग का अंत था जब पूतना जैसी राक्षसी को भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण कितने दयालु देखिए, अहो बकीयम सनकाल कूटम, मतलब बकी पूतना जो है बकासुर की बहन थी इसलिए उसका नाम बकी भी है। तो पूतना ने सोचा कि अरे देखो गोकुल में जाऊंगी, वहां जाकर कृष्ण को मारूंगी, लेकिन कृष्ण को देखकर ही समझ गए भैया ऐसा साधारण बालक नहीं है, है ना। और कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्राण निकाले पूतना की। काश सभी माताओं के गर्भ में कृष्ण होते और इन सब पूतनाओं का उद्धार हो जाता, लेकिन कृष्ण इतने दयालु भी नहीं है कि आप पाप करते रहो और बोलो जी हाँ जी हम भी पूतना का ही रोल प्ले कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बचाने आए कृष्ण। तो इतना सस्ता नहीं है, इसलिए कली काल में कृष्ण प्रकट होते हैं हरि नाम के माध्यम से। इस हरि नाम के उच्चारण से कलयुग में जो है हमारा उद्धार होता है। बहुत सुंदर यहां पर वर्णन दिया गया है कि किस तरह से जब पूतना का वध हो गया तो किस तरह से यशोदा रोहिणी समस्त गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। देखिए बच्चे की रक्षा के लिए कितनी सारी व्यवस्था कर रहे हैं माता यशोदा माता रोहिणी, कितना ख्याल रख रहे हैं, कितना प्रेम दे रहे हैं बच्चे को। ये नहीं कि उन्होंने जो है किसी नर्सरी स्कूल में या क्रश में भेज दिया जहां पे क्रिडल में रखा हुआ है या कोई आया है वो देख रही है, और माता पिता तो हैं दोनों जॉब में जा रहे हैं, पीछे जो है नर्स देखेगी या कोई आय देखेगी या नौकरानी देखेगी बच्चे को, हमारे पास समय नहीं है पैसा कमाना है, बच्चे को कैसे पालेंगे हम लोग, इसलिए दोनों जो है नौकरी में जा रहे हैं और बच्चा जो है पीछे रो रहा है, उसको कोई मात्र प्रेम नहीं मिल रहा, कैसी रक्षा हो रही है बच्चों की देखिए। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और तीन बार जल का आचमन किया जैसा कि मंत्र उच्चार के पूर्व करने की रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्र उच्चार किया, हे कृष्ण मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करें, अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांव की रक्षा करें, भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर भाग की और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। क्योंकि देखिए माता यशोदा उनको ये बात का ज्ञान ही नहीं है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनकी कौन रक्षा करेगा, ये जितने भी अवतार बता रहे हैं तो सारे कृष्ण की सेवा में लगे हैं। केशव आपके हृदय की रक्षा करें, भगवान ईश आपके वक्ष स्थल की रक्षा करें, भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें, भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें, भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें, भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें, धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाई ओर से, भगवान अर्जुन आपकी बाई ओर की रक्षा करें। लेकिन एक बात यहां पे यह है कि माता यशोदा यार मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, वो ये नहीं कह रहे हे गणेश आप इनकी रक्षा करें, हे जो है दुर्गा आप इनकी रक्षा करें, ऐसा नहीं कह रहे। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी और से रक्षा करें, भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें, भगवान ताक्षर पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें, भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें, भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेत दीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें, पृष्णिगर आपकी बुद्धि की रक्षा करें, श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करें, आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें, और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारी संकटों से रक्षा करें, जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपके नीचे गिरने से बचाएं, जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें, और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आप सभी प्रकार आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें, और आप सबकी रक्षा करें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इसलिए हम लोग विष्णु तिलक जो लगाते हैं रोज, उसमें हम लोग 12 स्थानों में तिलक लगाते हैं ताकि हमारी रक्षा हो इन नामों के द्वारा। कलयुग में केवल नामों के द्वारा ही रक्षा होती है। माता यशोदा यहां पर प्रूव कर रही है वो प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से नामों के द्वारा हर प्रकार की रक्षा मिलती है। ऐसे पापियों को भी रक्षा मिलती है जिन्होंने गर्भपात किया है, अगर वो नाम का उच्चारण लेना प्रारंभ कर दें उनके समस्त पाप नष्ट हो जाए। लेकिन दोबारा फिर ये प्रोग्राम ना बनाएं कि हम इस्कॉन में आएंगे और इस्कॉन में आने के बाद फिर से हम गर्भपात का कार्यक्रम शुरू करेंगे, क्यों हरि नाम तो हमने ले ही लिया है, तो इतना सस्ता बिजनेस नहीं है। तो इसलिए बहुत हमें सावधान होना चाहिए। बहुत सुंदर कथा है 12 चित्र केतु की, जिस प्रकार हमें शिक्षा मिल रही है यहाँ पर कि किस तरह से बच्चे को मारने से किस तरह उन सब जितने भी उनकी पत्नियां थी उन सब को पाप कर्मों का फल भुगतना होगा और इस कारण से वो यमुना जी में स्नान करने गए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए, और साथ में उनको इस बात का पश्चाताप भी हो रहा था कि उन्होंने गलती की है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि हरि नाम लेते हुए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम पश्चाताप करें। पश्चाताप, अजामिल ने भी पश्चाताप किया। अजामिल जब विश्वदूत चले गए और यमदूत भी चले गए उसके बाद अजामिल ने बहुत पश्चाताप किया। श्रीमद भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है इसका 6 स्कंद में कि किस तरह से अजामिल ने पश्चाताप किया, हाय हाय मैंने ये कौन सा घिनौना कार्य कर दिया, एक वैश्या की संगति में फंस गया, मैं कुसंगति में फंस गया। इस प्रकार अजामिल ने बहुत पश्चाताप किया और इस तरह से नामों का आश्रय लिया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि जब हम महामंत्र का जप करें तो हम लोग पश्चाताप करें कि हमने बहुत बड़े अपराध किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, हमें क्षमा करिए, हमें बचाइए, हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार से महामंत्र हमारी रक्षा करेगा और हम समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? बात सही है कि जैसे रुक्मिणी जी ने भी प्रार्थना की, लेकिन इस प्रकार जो प्रसंग आता है भागवत में तो यही दिखाया जा रहा है कि देवी देवताओं के पास भी अगर ये जाते थे ब्रजवासी तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जाते थे, कृष्ण के लिए वो देवी देवताओं के पास जाते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भौतिक इच्छा तो कोई था ही नहीं, उनके पास थी नहीं, तो इसलिए वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को पाने के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। समाज में ऐसी रीति है, लोग देवी के मंदिर में जाते हैं, शिवजी के मंदिर में जाते हैं, तो इस प्रकार उनके पास जाकर भी हम कृष्ण को मांगते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जाते हैं।
रिगार्डिंग दिस अबॉर्शन, वुमेन दे गेट अबॉर्शन,
तो ये गर्भपात के लिए जैसे बताए, अबॉर्शन के लिए बताया जाता है कि माताएं अपना अबॉर्शन करते हैं।
Prabhupada said they will go from womb to womb for millions of births and never see the light of day।
तो प्रभुपाद बताते हैं इसका परिणाम ये होगा कि एक गर्भ से ऐसा जो करने वाले हैं उनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाना पड़ेगा और कभी वो इसका कई हजारों सालों तक और कभी वो रोशनी भी नहीं देखेंगे दिन की।
That is the sinful reaction।
ये इसका पाप का परिणाम होता
है। That indicates that their mother will either abort them also।
तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एक और ये मतलब है, या तो उनकी माताएं उनको उनका अबॉर्शन करेंगे,
or the embryo will miscarriage।
और या फिर जो बच्चा है वो गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा।
So millions of births is very severe, never leaving the womb, simply from one womb to another. For millions of births, never able to come out, even in an animal body. You see, very severe reaction. And so we can't imagine now how many, you know, you mentioned how popular it is now, but it's there are millions of abortions. India is very widespread now. Also, or to speak of the West.
तो उसका पाप का परिणाम बताया गया कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ जाना है, हालांकि उनको पशु जीवन भी प्राप्त नहीं होता, इतना ये पाप में कार्य होता है। और भारत में देखा जाए तो बहुत ही साधारण बात हो गई है।
There's one gynecologist. Gynecologist means lady doctor for birth specialization and all that. Ladies doctor.
एक lady doctor थी जो बच्चा तो जन्म देने में थोड़ा
Bhaktivedanta Hospital in Mumbai.
और Bhaktivedanta Hospital ये जो मुंबई में अस्पताल है.
He used to be an abortion doctor.
तो वो पहले abortion की डॉक्टर हुआ करते थे.
He personally did 20,000 abortions.
और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 20,000 abortion खुद करे थे.
By some inconceivable mercy of the devotees, they preached to him.
और भक्तों की कृपा से कारण उनको फिर प्रचार किया गया.
So he became a devotee.
और फिर वो बाद में भक्त बने.
So now he's on the staff. He's still, you know, gynecologist. He's on the staff of doctors at Bhaktivedanta Hospital.
और वो Bhaktivedanta अस्पताल के डॉक्टर के इसके स्टाफ में है.
And now he preaches against abortion.
और अब वो अबॉर्शन के विपरीत प्रचार करते हैं.
So you could imagine, you know, he's very serious and very effective in his preaching now, you know. But we see the mercy of Prabhupada, the mercy of Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, that such a man having committed severe sins. But the devotees in our movement are so empowered by Srila Prabhupada that even such a severe sinner can be delivered. That's that we see that the devotees, the avesh of Nityananda Prabhu is carried in this movement. Even the so-called common devotees, you know, are carrying the mercy of Prabhupada, and Prabhupada is the mercy of Nityananda Prabhu, Radharani. That even so-called common devotees are carrying such incredible empowerment that such a sinful man could be delivered and become a devotee. That we should appreciate.
Maharaj is telling that Nityananda Prabhu, Radharani, and Prabhupada's kripa mein itni shakti hai, aur ye kripa ek sadharan bhakt ko bhi, jo kanishth adhikari ke star pe bhi ho, to usko bhi ye prapt hai, wo bhi. जिसने उसका उद्धार कर सकता है जो बहुत ही ऐसे पाप में कार्य कर रहे हैं.
गुरु को रिएक्शन लेना पड़ेगा. गुरु को लेना पड़ता है कर्म शिष्यों का. अगर शिष्य नियम तोड़ते हैं, कोई भी नियम तोड़ते हैं, तो गुरु को फिर रिएक्शन लेना पड़ता है. और ये है कि शिष्य जो है पहले तो पाप करता था दीक्षा से पहले, अब दीक्षा के बाद उसको डबल बेनिफिट मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है. पाप भी किया उसने और अपराध भी किया, क्योंकि फिक्र के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, पूरे वैष्णव समाज के सामने उसे चार नियम पालन करने का व्रत लिया था. अब वो नियम तोड़ता है तो वो अपराध भी है और पाप भी है दोनों, तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा उसको.
स्त्री लोग जो पांच होती है, इसका मतलब क्या है? लोग गर्भपात क्यों इसके इस जन्म में उनको? कुछ स्त्रियां जो पांच होती है, संतान नहीं होते, तो इस तरह वो गर्भपात क्यों इसलिए इस जन्म में उनको संतान नहीं प्राप्त हो रहा?
अब ये पता नहीं. मुझे पता नहीं हिस्ट्री क्या उसका. भगवान जानते हैं.
वही जो आपने बताया लिव इन फिलोसफी का, जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं,
वो एक्चुअली फिलोसफी नहीं है. वो तो वर्ड यूज किया हमने फिलोसफी, कोई फिलोसफी नहीं है. वो लिव इन स्टाइल बोल सकते हैं.
लिव इन स्टाइल के जो रीजन देते हैं, तो इस रीजन का क्या खंडन किया जा सकता है? अगर वो कहेंगे तो क्या गलत है कि एक साल हम जो उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि एक साल हम साथ रहना चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे विवाह करें, तो इस आर्ग्यूमेंट में इसका क्या, कैसे खंडन किया जा सकता है? तो क्या
देखिए, ये भी कोई गारंटी नहीं है. अगर मान लीजिए एक साल के बाद अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रहा और लगता है कि लिव इन स्टाइल जो है वो फेल हो गया, तो फिर कौन अपनाएगा ऐसे? कोई सभ्य व्यक्ति तो नहीं अपनाएगा ऐसे लड़के को या लड़की को. कोई उसी तरह का होगा लिव इन स्टाइल में, तो वही अपनाएगा. वो लिव इन स्टाइल वाले ही आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, तो ये सब नर्क जाने की तैयारी है. अगर अच्छा पशु बनना है सोफिस्टिकेटेड, तो लिव इन स्टाइल को अपनाइए, है कि नहीं? ये हमारा कल्चर नहीं, हमारी फिलॉसफी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं, हमारी सभ्यता नहीं है. ये तो पाश्चात्य जगत से नकल किया गया है और कुछ नहीं है. आगे बात करें. अब नहीं करना चाहिए. अनजाने में तो हमने बहुत सारे पाप कर दिए बचपन से. अब
ہری نام لینے کے بعد اب ہمیں دوبارہ پاپ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کا بھی اتنا ہی ریئیکشن ہوگا اور سپر ریئیکشن ہوگا اور اس میں کوئی سنشے نہیں ہے. اور اگر دیکھیے اچھا ہے کہ وہ بچہ جنم لے اور اس بچے کی سیوا کی جائے تو اس طرح سے جو کرم پھل بھگت رہے ہیں اس کو بھگت لیں اسی جیون میں. لیکن بچے کو اس اوستھا میں ماریں گے جو بےچارا اپنگ ہے یا کسی کارن سے بھی رگن ہے اس کو اگر گھر میں مارتے ہیں تو اس کا کئی جنموں تک جو ہے اس کا ریئیکشن ملے گا. اس سے اچھا ہے کہ اسی جنم میں اس کو جنم دے کے اس کا ریئیکشن لے کے ختم کرے اور اس کو بھکت بنا دیں. آپ سن رہے ہیں؟ ترنت مل جاتے ہیں جنم لیتے ہی, جنم لینے سے پہلے ہی, جنم لینے سے پہلے ہی اس کو ریئیکشن ملنا شروع ہو جاتا ہے. ساتویں مہینے میں بتاتے ہیں کہ بھگوان کپل دیو بتا رہے ہیں کہ چیتنا آ جاتی ہے جیو کو کہ میں شریر میں ہوں, اور شریر میں رہتے ہوئے وہ کشٹ پاتا ہے ماتا کے گھر میں ہی, وہیں سے اس کو ریئیکشن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس جنم میں ہم جو کرم کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن 1% بھی نہیں مل رہا ہے. جو بھی ریئیکشن مل رہا ہے وہ پچھلے جنم کا مل رہا ہے, پچھلے جنم کا ہی ہمیں ریئیکشن مل رہا ہے, 1% بھی اس جنم کا نہیں مل رہا ہمیں. ٹھیک ہے؟ ہاں اپرادھ کریں گے بھکتی مانے کے بعد اس کا ریئیکشن مل جائے گا ترنت. دھیان پوروک جب کرنا ہے اور پشچاتاپ کرنا ہے. ہردے میں گلانی ہونی چاہیے نا کہ ہم لوگوں نے بہت سارے پاپ کیے ہیں اس لیے میں بھگوان کا نام لے رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم نے کشٹ نہیں پایا نا بھکتی مانے کے بعد, اس لیے ایسا لگ رہا ہے. جب ہم کشٹ پانا شروع کریں گے تب پشچاتاپ ہوگا. جب سڑک میں درگھٹنا ہوگی تب آپ گاڑی ساودھانی سے چلائیں. ٹھیک ہے؟ گرنتھ شریمد بھاگوتم کی جائے, شیلا پربھوپاد کی جائے, سمویت بھکت برند کی جائے, پریمانندے.